الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پروگرام ہے انسانی جسم کے بارے میں حیرت انگیز معلومات، آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو پھر وضو کرے تو تین بار ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ یہ حدیث پاک اپنے ظاہر پر ہے، اور شیطان سے مراد وہ قرین ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، بیداری میں برے کام کے مشورے دیتا ہے، نیند میں ناک میں جا کر بیٹھتا ہے تاکہ دماغ میں برے خیالات پیدا کرے۔ ناک اس سے متلوث ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا وضو میں اسے بھی دھو لیا جائے۔ خیال رہے کہ جیسے ناک جھاڑنا ہر وضو میں سنت ہے، ایسے ہی کلائی تک ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے، کیونکہ یہ علم حکمت نہیں حکمت علم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں گندا آدمی بیٹھ جائے وہ جگہ دھو دینا بہتر ہے، کہ وضو میں ناک اسی لیے دھوئی گئی کہ اس میں گندا شیطان بیٹھ گیا تھا۔ سو ٹوڈے آور ٹاپک از کلیئر اینڈ اٹ از نوز، ناک، اور ساتھ اس کے لنگز کو بھی ہم دیکھیں گے، لنگز سے مراد پھیپھڑے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر پائیں گے، دے آر کاؤنٹ لیس۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک نعمت ظاہری طور پر ہے، بلکہ ایک ہوتا ہے کہ اس نعمت کے اندر گہرائی کتنی ہے، اور اس ایک نعمت کی آگے کتنی زیادہ نعمتیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ، یو شوڈ گو ڈیپ ڈاؤن اف یو وانٹ ٹو ایکسپلور دا ٹرو میننگ آف دا بلیسنگ۔ سورۃ النحل میں فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تندرست بدن، آفات سے محفوظ جسم، صحیح آنکھیں، عقل سلیم، ہاتھوں سے پکڑنا، پاؤں سے چلنا، اور انہی میں سے ایک نعمت ہوا ہے۔ ایک جوان آدمی اگر ریسٹ کر رہا ہو تو 7 سے 8 لیٹر ہوا ایک منٹ میں اندر لے جاتا ہے، اور 11,000 لیٹر ہوا ایک دن میں۔ اور یہ جو ہماری ہوا ہے، دیکھیے یہ جو ہوا ہے اس وقت، یہ ہوا مختلف گیسز کا مجموعہ ہے۔ سب سے زیادہ اس میں نائٹروجن ہے 78%، اور 21% آکسیجن ہے، اور باقی جو بچی اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نیون اور ہائیڈروجن ہے۔ اس میں واٹر ویپرز بھی ہیں، پانی کے بخارات بھی ہیں۔ تو جب ناک سے انسان سانس لیتا ہے تو یہ ساری ہوا ہی ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہے، اور یہ جسم کا وہ عضو ہے، وہ آرگن ہے جہاں سے سانس اندر جاتی ہے۔ اور ہمارے جسم کے ریسپیریٹری سسٹم یعنی نظام تنفس کا پہلا سٹیپ ہے۔ اب نظام تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم کا مطلب کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ مختلف عضو اور ٹیشوز پر مشتمل ایک نظام ہے جس کے ذریعے آپ سانس لیتے ہیں۔ اس میں خاص ہوا کے رستے بنے ہوئے ہیں جسم کے اندر، پھیپھڑے ہیں، بلڈ ویسلز ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت ہی چھوٹی خون کی نالیاں ہیں، اور انگور کی طرح کے سیکس ہیں چھوٹے چھوٹے پھیپھڑوں کے اندر۔ یہ بہت بڑا نظام ہے جس نظام کے ذریعے آکسیجن ہمارے پورے جسم کو پہنچتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے۔ اب یہ ایک سانس تو ہم نے لے لیا، کیا آپ جانتے ہیں اس میں 10 حصے ہوتے ہیں؟ جب یہ سانس لیتے ہیں ہم 10 حصے اس میں انوالو ہیں۔ نمبر 1 ناک یا منہ، دونوں میں سے جہاں سے آپ سانس لے رہے ہیں، پھر تھراٹ حلق جہاں سے یہ سانس اندر جا رہا ہے، نمبر 4 وائس باکس لیرنگس، یہ جو آواز میری آ رہی ہے یہ وائس باکس سے آ رہی ہے۔ اکثر اوقات آواز بیٹھ جاتی ہے نا، یہ وائس باکس ہوتا ہے انسان کا جس پہ کوئی بیکٹیریا آ جاتا ہے، پھر وہ وائس باکس کو دوبارہ ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ونڈ پائپ ہے، پائپ ہے ایک، لارج ایئر ویز ہیں، اسمال ایئر ویز ہیں، ہوا کے گزرنے کے بڑے راستے ہیں، ہوا کے گزرنے کے چھوٹے راستے ہیں، और फिर लंग्स यानी फेफड़े। तो ये नाक और फेफड़े बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, बड़ा सख्त काम कर रहे होते हैं। जब आप सो भी रहे हैं उस वक्त भी एक एक खलिए तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे होते हैं। याद रखिए हमारे जिस्म में 15 खरब खलिए हैं और 15 खरब खलियों को 1 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीजन चाहिए। अगर किसी हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो हिस्सा मरना शुरू हो जाएगा। तो नाक और फेफड़े, हाउ इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर। तो 24 घंटे दिन के, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन ये काम चल रहा है। और 1 मिनट में आप 12 से 15 दफा सांस लेते हैं, 1 मिनट में 12 से 15 दफा, और 1 दिन में 17,000 मरतबा, और 1 साल में 60,00,000 मरतबा एक इंसान सांस लेता है। आपके फेफड़े जिस्म के अंदर मौजूद जो बड़े आजा हैं उनमें से एक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन। फेफड़ों का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, हमें तो छोटे नजर आ रहे होते हैं, इनको फैलाया जाए तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। और हवा ले जाने वाली नालियां जिन्हें एयरवेज कहा जाता है, जो कि हवा लेकर जाती हैं, इनकी लंबाई 1500 मील होती है। 1500 मील, ये गुच्छी बन के समझ ले हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद है। तो जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं, चाहे मुंह से लेकर जाए चाहे नाक से, पहले ये विंड पाइप में जाती है, दोनों फेफड़ों के दरमियान में जो नाली है, और फिर 2 ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं बड़ी, ऐसे गई फिर ऐसे तकसीम हो गई, और फिर ये बड़ी नालियां आगे जाके छोटे ब्रोंकियल्स में तकसीम हो जाती हैं। जब सांस लेते हैं और आपको नमोनिया हुआ है, इस तरह सीटी की आवाज आती है ना, ये रेशा उन नालियों में फंसा होता है, फिर नेबुलाइज करते हैं, कोई दवाई खाते हैं तो रेशा रिलीज होता है। 2 फेफड़े होते हैं जी, एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। जो लेफ्ट है वो राइट से थोड़ा छोटा है, और लेफ्ट फेफड़ा थोड़ा सिरका होता है ताकि दिल को जगह दे सके। जब सांस अंदर जाता है तो फेफड़ों में हवा ऐसे ही भरती है जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है। तो जब आप सांस अंदर लेकर जाते हैं फेफड़े फूल जाते हैं। अब एक फेफड़े में कितनी हवा आ सकती है ये सबका मुख्तलिफ होता है, कद इंसान का, वो मर्द है या औरत है, उसकी उम्र कितनी है, वो किस इलाके में रहता है, फेफड़ों की सेहत कितनी है। अगर वो तम्बाकू नोशी करता है, सिगरेट पीता है, कोई और काम ऐसा है तो फिर उसके फेफड़ों की सेहत नहीं है सही। आपने देखा होगा अक्सर का जो लोग ज्यादा मोटापा जिनको होता है या सिगरेट ज्यादा पीते हैं वो सांस तेज तेज ले रहे होते हैं ना, क्यों, उनके फेफड़े ज्यादा हवा नहीं रख सकते। तो वैसे एक जवान मर्द जो है वो एक वक्त में 6 लीटर हवा अपने फेफड़ों में रख सकता है। अब चूंकि हवा बाहर से आती है, इसमें धुआं भी होता है, इसमें गंध होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी वगैरह होती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक फिल्टर है कि सांस वाली जो नालियां हैं, जो जहां से सांस गुजरता है, उसमें सीलिया नाम के छोटे छोटे बालों की तरह की एक लाइन होती है जो कि हवा को फिल्टर करते रहते हैं, और फिर वो हवा हमारे जिस्म में पहुंचती है, ऑक्सीजन उससे निकल जाती है और बाकी चीजें दोबारा सांस से बाहर आ जाती हैं। एक बूढ़ा आदमी था, अरब के किसी शहर में ये वाकया हुआ, उसकी सांस में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो हॉस्पिटल आया, उसको ऑक्सीजन लगी। एक दिन उसको ऑक्सीजन लगी तो शाम को जब वो जाने लगा तो डॉक्टर ने उसको बिल दे दिया कि ये आपका बिल बना है। उसे जब बिल पड़ा उस पर कैफियत तारी हो गई, वो रोने लगा। डॉक्टर से पूछा कि आपके पास पैसे नहीं है, वो कहने लगा नहीं पैसे मेरे पास हैं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब से पैदा हुआ हूँ मैं ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मुझे बिल नहीं आया, मैं आपके पास एक दिन के लिए आया और आपने बिल थमा दिया, बेशक मेरा रब कादर मुतलक है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा फरमाई, ये जंगल, ये दरख्त, ये बयाबान, ये सहरा, ये फल, ये सब्जियां, ये जानदार, ये सूरज चांद सितारे, ये हवा, और हमें किस लिए बनाया, हमारा काम क्या है। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, और मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। प्राइमरी मोटिव इज टू वर्शिप अल्लाह, सो जस्ट थिंक वट वी हैव डन अप टिल नाउ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इस मकसद के लिए हमने अभी तक क्या कोशिश की है और हमारा मुस्तकबिल का प्लान क्या है। किसने बड़ी प्यारी बात की कि हम सब लाइन में खड़े, हमसे जो सबसे अगला वाला बंदा है उसकी बारी आ गई वो चला गया, ये मौत की लाइन है, सबसे अगले वाले की बारी आई वो चला गया, उससे पिछले की बारी आई वो चला गया, हर 1 मिनट के बाद बंदा जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अच्छा हमें ये नहीं पता कि हमारी बारी कब आएगी और हमसे आगे लोग कितने खड़े हैं, ना हम लाइन छोड़ के भाग सकते हैं ना हम लाइन को अवॉइड कर सकते हैं, हमने लाइन में खड़े होना ही खड़े होना है। ये बताइए कि जब तक आप लाइन में खड़े हैं उस वक्त तक आप कर क्या रहे हैं, क्या अंदाज है लाइन में खड़े होने का? एक एक लम्हे की कदर कर रहे हैं? बारी तो किसी वक्त भी आ सकती है ना, हमें पता नहीं लोग कितने आ गए हैं। क्या आपने तरजीहात बनाई है, टाइम की कदर की? जो ताकतें और सलाहियतें आपके पास हैं वो जो आप लेकर पैदा हुए या वो जो आपने दुनिया में आने के बाद सीख ली, क्या उन सलाहियतों के जरिए आपने दीन इस्लाम का काम किया? छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना सीखे, मोहब्बत और अमन फैलाएं अल्लाह की रजा के लिए, ताकि जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो अल्लाह के करम से कामयाबी तो नसीब हो। ऐसे बुजुर्गाने दीन भी गुजरे जो जब दुनिया से तशरीफ ले गए उनके माथों पर लिखा आ गया कि अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। लोगों को ख्वाब में आ गया कि जो दुनिया से गया है कामयाब होकर गया है। तो ये अल्लाह ताला का करम है। हमें चाहिए कि अपने इन औकात को, अपनी नेमतों को सही अंदाज से बसर करें, इनका इस्तेमाल गलत ना करें। देखें, जब इंसान माँ के पेट में होता है तब तो उसे ये नेमतें सूरज चांद सितारे हवा की नहीं मिल रही, जो मिल रहा है माँ से डायरेक्ट मिल रहा है। जैसे वो दुनिया में आया कुछ सेकंड के बाद उसने पहला सांस लिया, और जैसे उसने पहला सांस लिया उसका ये जो निज़ाम हमने सुना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये चलना शुरू हो गया। अब एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा, बच्चा पैदा होते साथ ही उसके सारे निज़ाम सही तरह से चलते नहीं। आपने नोट किया होगा जैसे बच्चा पैदा होता है उसको जॉइंडिस हो जाता है, यरकान हो जाता है ना, आँखें पीली हो जाती हैं, फिर कुछ अरसे के बाद वो ठीक होता है। ये इसलिए होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ उसका जिगर पहले तो माँ के जिगर के साथ काम कर रहा था, अब अलग से काम एकदम से शुरू करता नहीं है, कुछ अरसा लगता है उस जिगर को काम करने में। इसी तरीके से कुछ बच्चों को थूक बहुत आता है बचपन में ही, पहले तीसरे चौथे पांचवें माह में, वो थूक को कंट्रोल करने के मसल बच्चे के सही तरह बने नहीं होते, वो जब बन जाते हैं फिर वो थूक कंट्रोल हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आंखें भी बच्चा पूरे तरीके से दूर नहीं देख सकता, बच्चे को हाइपरट्रोमिया हुआ होता है, वो नज़र अपनी मरकूज नहीं कर सकता। हम समझते बच्चा हमें देख रहा, हमें देख नहीं रहा होता, कुछ अरसे के बाद उसकी आंखें डेवलप होती है कि उसको पता चलता है कि ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये माइलस्टोन्स होते हैं, दो माह में, चार माह में, छः माह में बच्चा बैठना शुरू करेगा, साल में चलना शुरू करेगा, बाबा मामा कहना शुरू करेगा, छः माह बाद उसको पहली ठोस गिजा दी जाए और ठोस गिजा के बाद फिर बच्चा आगे चलेगा। तो ये बात याद रखिए कि बच्चे के लिए माँ के दूध के बाद सबसे बेहतरीन गिजा जो है वो दस्तरखान का खाना है, यानी दलिया और आलू केला, ये जो दीगर चीज़ें मिलती हैं बाज़ार से, ये उन लोगों के लिए है जिनकी माएँ वगैरह जॉब वगैरह करती हैं और बच्चों को सही तरह से खिला नहीं सकते, तो बने बनाए खाने फौरन खिला दिए, बेहतरीन दस्तरखान की रोटी केला और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मदरी चैनल के नाज़रीन, हम यहाँ पर सुन रहे थे कि अल्लाह हमें कामयाबी नसीब फरमाए। फरमाया तुझे बेकार नहीं पैदा किया गया, अल्लाह अज़्ज़ल फरमाता तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लुटाए नहीं जाओगे? हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इंसान तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना गिना से भर दूंगा और तेरी मोहताजी का दरवाज़ा बंद कर दूंगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे हाथ मसरूफियत से भर दूंगा और तेरी मोहताजी का दरवाज़ा बंद नहीं करूँगा। तो देखिए हर बंदा शिकायत करता हुआ नजर आता, जी पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। रमज़ान का महीना हमें मिला अपनी ज़िंदगी में, आलमी वबा से कितनी अमवात हो चुकी, तो अल्लाह के करम से हमें सेहत और आफियत के साथ रमज़ान मिला। तो इबादत कीजिए, रोज़ा रखिए, सहरी और अफ्तारी भी इबादत है, तरावी कसरत से तिलावत तस्बीह अज़कार खूब कोशिश कीजिए कि ये मेहमान हमसे राज़ी होकर जाए और बरोज़ क़यामत रमज़ान हमारी शफात करे। आइए अब सांस लेने की कुछ एक्सरसाइजेस भी सीख लेते हैं। ये याद रहे कि सांस लेना जो ब्रीदिंग है ये स्ट्रेस टेंशन और एंग्जाइटी को दूर करने में बहुत मुमेद व मुआविन साबित हो सकता है, यानी सांस लेना भी इंसान को नफसियाती अमराज से दूर कर सकता है। तो सांस की एक्सरसाइज से पहले ये टिप्स याद रखिए, एक जगह का आप चुनाव करेंगे जहाँ आप सांस की एक्सरसाइज कर सकें। बेहतर ये है कि बिस्तर हो, ज़मीन हो या कोई आरामदेह कुर्सी हो आपकी, डोंट फोर्स इट, ज़बरदस्ती एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि इसका मकसद रिलैक्सेशन है। तो आराम से फारिग वक्त में बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने एक्सरसाइज करनी है वरना स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। नंबर थ्री, कोशिश करें कोई दिन का एक वक्त तय कर लें और फिर उसके ऊपर ही एक्सरसाइज की जाए और इस दौरान कोई आरामदेह कपड़े पहनिए। नंबर वन एक्सरसाइज नोट कीजिए, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, और नाक से सांस लें। नाक से सांस आपने ऐसे लेनी है कि पेट यानी बैली वो फूले, महसूस हो, फिर थोड़ी देर के लिए सांस रोक के फिर सांस को बाहर निकालना है आहिस्ता आहिस्ता। जब आप ये एक्सरसाइज 12 से 13 दफा करेंगे और फुल सांस लेना है आपने, जितना सांस लिया जा सकता है, और सांस को देखना है वो गुजरते गुजरते ऐसे हो कि बैली फूले और फिर उसको बाहर निकालें, तो इंशाल्लाह आमतौर पे वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हैं भागते हैं उनका ऐसा काम होता है, एथलीट्स होते हैं और सांस का काम होता है, तो उनके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। और दूसरा, आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज, और सांस अंदर ले जाएं और जहन को सोचों से खाली करके आपने ये तस्वुर करना है कि मैं जो अंदर सांस लेके जा रहा हूं तो मैं अमन को, सुकून को, खुशी को और पॉजिटिव चीजों को अंदर लेके जा रहा हूं। ये आपने सोचना है और बकायदा अपने आप को कहना भी है। और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो तब आपने ये सोचना भी और कहना भी है कि मैं टेंशन को, एंग्जाइटी को बाहर निकाल रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। 10 से 15 दफा जब आप ये काम भी करेंगे तो आपको वाकई अंदाजा होगा कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी बाहर निकल रही है। बकायदा ये जो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट होते हैं, नफसियाती अमराज के डॉक्टर होते हैं, वो ये एक्सरसाइज अपने मरीजों को करवाते हैं और इसका फायदा भी होता है। तो मेरे मोहतरम सामीन कराम, मदनी चैनल के नाजरीन, नाक ये सिर्फ एक हड्डी और गोश्त के अलावा बहुत से अहम कामों में इस्तेमाल होती है, सुनने और टेस्ट में भी। इंसानी नाक के मुख्तलिफ साइज और शक्लें हो सकती हैं। नाक के अंदर दो सुराख होते हैं, इन्हें नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। इंसानी नाक 1 खरब से ज्यादा खुशबुएं या बू सूंघ सकती है, 1 खरब से ज्यादा। नाक हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारे जिस्म में जो हवा दाखिल हो रही है उसके जरिए जरासीम दाखिल हो सकते हैं, तो दफाई निज़ाम में पहला ये स्टेप है। और आप सब जानते हैं आजकल तो ये बात बहुत ज़्यादा है कि COVID-19 का जो जरासीम है, वायरस है, वो नाक से, मुंह से या आंख से ही जिस्म के अंदर जाता है। तो आम तौर पे नाक से निकलने वाला जो मादा है जिसको बलगम या रीट कहा जाता है, अगर ये पीले या सब्ज रंग की हो जाए तो समझ लें कि हमारा जिस्म वो जरासीमों से लड़ रहा है। आमतौर पर सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन अगर ये इसका रंग बदल जाए तो समझ लें कि इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो नाक के बगैर हमें खाने का जायका नहीं आएगा, और नाक की मदद से हम सुनते भी हैं क्योंकि नाक में और कान के अंदर एक लाइन है जो मौजूद है। नाक की आम बीमारियों में नज़ला, ज़ुकाम, नाक का बंद हो जाना, एलर्जी, इन्फेक्शन साइनस का ये शामिल है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बिलखसूस इस आलमी वबा के दिनों में, कि नाक से अगर सूंघा नहीं जा रहा, खुशबू नहीं आ रही कोई, तो फिर कोई बीमारी बड़ी हो गई है। ऐसा मसला नहीं है। नाक की खुशबू या नाक की सूंघने की सलाहियत और भी वजूहात से मुतासिर हो सकती है। मिसाल के तौर पर इसकी एक वजह वायरल इन्फेक्शन है। अगर वायरस से इन्फेक्शन हुआ, COVID-19 भी वायरल इन्फेक्शन है, तो साइनस के इन्फेक्शन से कोई तंबाकू नोशी ज़्यादा करता है उसकी भी जा सकती है। ट्यूमर नाक में हो गए, और किसी की उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, ज़्यादा उम्र होने के साथ भी सूंघने की सलाहियत मुतासिर होती है। एक बीमारी नमूनिया है, आमतौर पर जो फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी एयर सैक्स हैं, छोटी छोटी थैलियाँ हैं, यहाँ पर पस या फ्लूड बलगम जम जाती है जिससे खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसको निमोनिया कहा जाता है। एक बीमारी एस्मा है, जिसे आमतौर पर एस्थमा कहा जाता है, इसका असल प्रोनंसिएशन एस्मा है। ये एक बीमारी है जो फेफड़ों को मुतासर करती है, बच्चों और बड़ों में होती है और लंबी देर तक चलने वाली बीमारी है। इसमें छींके आना, सांस रुकना, सीने की जकड़न, रात को खांसी और सुबह के औकात में ज़्यादा खांसी आना है। इसकी वजह एलर्जी है। एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं ये भी सुन लीजिए। पोलन ग्रेन की एलर्जी है, गर्द यानी डस्ट की, मिट्टी की एलर्जी है, कॉकरोच एक कीड़ा है उसकी, वो भी हो तो उसकी एलर्जी हो जाती है। इसी तरीके से कमरे में नया रंग अगर किया हुआ है और जो बरसात उतर जाती है वो भी एलर्जी होती है। तो जो मरीज हो उसको ऐसी जगहों से बचना चाहिए। वो जितनी मर्जी दवाइयां ले ले, अगर वो उन जगहों के पास आएगा उसकी नाक का मसला शुरू हो जाएगा, छींकें शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो टीबी ये भी एक फेफड़ों का मर्ज है। पूरे जिस्म के किसी हिस्से को भी टीबी हो सकती है, दिमाग की भी टीबी होती है, लेकिन जो पल्मोनरी टीबी है, फेफड़ों की टीबी, ये सबसे कॉमन। और याद रखिए, कुछ अरसा पहले फेफड़ों की टीबी ये एक बड़ा नायाब मर्ज था, ये नहीं होता था, बहुत कम था। और फेफड़ों का कैंसर लेकिन इस वक्त मर्दों में सबसे ज्यादा जो कैंसर हो रहा है वो फेफड़ों का हो रहा है। क्यों? तंबाकू नोशी की वजह से। बहुत बड़ी वजह है। तो याद रखिए मदनी चैनल के नाजरीन, खांसी कोई बीमारी नहीं है, खांसी किसी बीमारी की निशानदही है कि कोई बीमारी आपके अंदर है। तो अगर आपको काफी लंबे अरसे तक खांसी रहती है, आपको बुखार रहता है, आपके खून आता है खांसी में और बहुत ज्यादा पसीना आता है, थकन हो जाती है, वजन कम हो रहा है, चेस्ट में पेन रहती है, तो आपको जरूर टीबी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि फेफड़ों की टीबी ये कंटेजियस है और ये मुख्तलिफ लोगों को लग सकती है। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। फेफड़े और नाक, इस आलमी वबा के दिनों में इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जो SOPs दिए गए उनकी एहतियात कीजिए। इस वक्त इस आलमी वबा के खिलाफ हमारे पास कोई हथियार नहीं है, बल्कि हमारे पास सिर्फ हिफाजती तदाबीर है। मास्क लगाना, PPE पहनना, जो कपड़े पहनते हैं डॉक्टर साहिबान, आगे से ढक लेना, आँखों को बचाना, ये हिफाजती तदाबीर है। हिफाजती तदाबीर कीजिए और आदो वज़ाइफ इस हवाले से पढ़ते रहिए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को तबीयत ख़राब हो जाए तो याद रखिए दवाइयाँ मौजूद हैं। वो तो नहीं है कि जो बिल्कुल ख़त्म कर दें, लेकिन बहरहाल अच्छे रिजल्ट्स वाली दवाइयाँ भी मौजूद हैं। तो डरे नहीं, टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवा के डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर उस पर फैसला लेगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब होने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। डरे नहीं, डरेंगे आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफियत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी और जो बीमारी ने पहले 10% असर करना था 50% करेगी। बहुत अच्छे तरीके से बीमारी को फेस करें और फेस करने के बाद अल्लाह ताला से आफियत तलब करें। बहुत ज़्यादा जो इधर उधर से खबरें आती हैं उनको भी ना सुने, मुसद्दका इत्तलाआत को सुने और जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करें। रमज़ान का बाबरकत महीना है, खजूर खाएं, केला खाएं, फल खाएं, जिसमें में कुत मुदाफियत बढ़ती है। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए और हम सब को इस माह रमज़ान में बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए।